आलीशान होटल के रूम नंबर 38 में एक शख्स ब्लैक थ्री पीस सूट पहने सोफे पर बड़े ही स्टाइल से बैठा था। उसके हाथ में वाइन से भरा हुआ कांच का ग्लास था, जिसे वो कभी घूंट भर रहा था तो कभी हाथ में नचा रहा था। होठों पर मुस्कान और नशीली निगाहें जो टिकी हुई थीं ठीक सामने ही चल रहे LED TV पर, एक न्यूज़ चैनल जिस पर अयान शार्वी की शादी की न्यूज़ दिखाई जा रही थी। वो शख्स पिछले कई घंटों से मिस्टर एंड मिसेस मेहरा की शादी को लाइव देख रहा था। जैसे ही उनकी शादी पूरी हुई, अयान शार्वी की दूल्हा दुल्हन वाले गेटअप में एक प्यारी सी फोटो स्क्रीन पर आई, जिसमें अयान शार्वी एक दूसरे की तरफ प्यार से देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तभी उस शख्स ने रिमोट से उस फोटो को रोक दिया, फिर सोफे से उठा और LED TV के सामने जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर वो खामोश रहा और फिर उसने अपना हाथ, जिसमें वाइन वाला ग्लास था, थोड़ा ऊपर उठाकर मुस्कुराते हुए बोला, "कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर एंड मिसेस मेहरा." पर दूसरे ही पल उसने वाइन वाला ग्लास टीवी की स्क्रीन पर ही उड़ेल दिया। इसी के साथ वहां शॉर्ट सर्किट जैसा धमाका हुआ और उस शख्स के चेहरे के हाव भाव सख्त हो गए। "तुम्हें पाने की तमन्ना अब भी दिल में लिए बैठा हूँ, तुम मिल नहीं जाती तब तक मैं खुद से भी रूठा हूँ." एक बड़ा सा कमरा जिसमें अंधेरा फैला हुआ था, बस एक स्पॉटलाइट जल रही थी, जिसके चलते नजर आ रहा था एक बोर्ड जिस पर सबकी फोटो लगी हुई थी, अयान शार्वी की, विनीत की, वर्तिका अभी की, तरुण की, मालती की, दिनकर जी की, अनिकेत जी की, तारा की, सोनाक्षी जी की, राधे की, शांति जी की, संकट जी की, सुजाता जी की, संयम की, जिया की, उन सबकी जो अयान शार्वी से रिलेटेड थे। उस कमरे में दो शख्स मौजूद थे, एक लड़का जो उस बोर्ड के पास खड़ा था, जिसकी बस पीठ नजर आ रही थी, और एक लड़की जो उस बोर्ड से थोड़ी दूर खड़ी थी और जिसकी जुनूनी नजरें चमकती हुई उस बोर्ड की ओर जा रही थीं। असल में वो अयांश की तस्वीर देख रही थी, जिसके चलते बीतता हर पल उसकी निगाहों में अयांश मेहरा के प्रति जुनून बढ़ाता नजर जा रहा था। तभी वो लड़की एटीट्यूड और दीवानगी भरे लहजे में बोली, "अयांश मेहरा, यू आर माई ऑब्सेशन." ये सुन वो लड़का उसकी ओर मुड़ा, पर दिखाई न दिया, बस परछाई सी दिखाई पड़ रही थी, उसकी ही नहीं, उस लड़की की भी। "लड़का, योर ऑब्सेशन इज वेरी डेंजरस." "लड़की, आई नो, यू नो दैट." आज तक अयांश मेहरा की कोई कमजोरी नहीं थी, सो उसे हराना मुश्किल था, बट अब ऐसा नहीं है। अयांश मेहरा की भी कमजोरी उसकी लाइफ में आ चुकी है, वो लड़की आरवी चतुर्वेदी। आरवी चतुर्वेदी नहीं, आरवी चतुर्वेदी मेहरा। कहीं ऐसा ना हो आरवी की वजह से अयांश मेहरा को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाए। नहीं, ऐसा अब नहीं होगा। मोहब्बत में है अयांश मेहरा और आरवी उसकी कमजोरी। आरवी का अयांश से दूर होना उसे कमजोर ही नहीं बनाएगा, बल्कि तोड़ देगा, टूट जाएगा अयांश मेहरा। मोहब्बत में इंसान की हालत और हालात दोनों बदल जाते हैं, जैसे तुम बदल गई हो। क्यों चाहती हो अयांश मेहरा को इतना कि उसे पाने की चाह में उसे बर्बाद करने को आतुर हो, जिद कर बैठी हो? वो लड़का आगे बोलता, वो लड़की बोल पड़ी, "जिद नहीं, जुनून, एक लौता जुनून। 4 साल 10 महीने 27 घंटे लगे हैं मुझे यहां तक पहुंचने में। मैंने खुद को अयांश मेहरा के काबिल बनाया है, इतना काबिल कि मेरा अयांश मेरा हो जाए, और अब होगा भी। मुझे आज भी याद है अयांश मेहरा से हुई मेरी वो पहली मुलाकात, बस एक दफा देखा था मैंने उसे। तूफान की तरह आया, एयरपोर्ट पर तुमसे टकराया था और तूफान की भांति चला भी गया, पर तुम पर अपना असर छोड़ गया, असर इस कदर की जुनून बन गया वो तुम्हारा। ये सुन वो लड़की उस बोट के पास आई, अयांश की फोटो पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, "आ रही हूं जल्द तुम्हारी लाइफ में। तुम नहीं जानते तुम्हें कितना चाहती हूं। तुमने मोहब्बत कर ली, तुमने शादी कर ली, किससे? आरवी से, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। आरवी को जाना ही होगा तुम्हारी लाइफ से, तभी तो हम एक हो पाएंगे। डोंट वरी, मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगी, तुम भूल जाओगे सब कुछ, तुम्हें याद रहूंगी सिर्फ मैं." कहे उसने पास के टेबल ड्रॉयर से अपनी एक फोटो निकाली और उसे भी बोर्ड पर एक पिन से अयांश की फोटो के पास लगा दिया। ये देख पास खड़ा लड़का फट से बोला, "ये क्या कर रही हो?" "आग से खेलने जा रही हूँ, जलना तो तय है," कहते उस लड़की ने उस बोर्ड को उसी पल आग लगा दी। वो बोर्ड क्या, उस पर लगी हर तस्वीर धीरे धीरे जलने लगी और उस लड़की की नजरों में अब जुनून की जगह तलब की ऐसी आग नजर आ रही थी, ऐसी आग जिसमें पता नहीं कौन तबाह होने वाला था, अयांश मेहरा या वो लड़की खुद। Scene 2। एक खंडहर जैसी जगह जो गूंज रही थी किसी मर्द की दर्द भरी चीखों से। वहां मौजूद थे अयांश, आरवी, विनीत और पुलकित, जिनकी नजरें टिकी थी ठीक सामने, जहां पर एक पिंजरा था जिसमें एक आदमी था और चार पांच खतरनाक कुत्ते जो बेहद बुरी तरह उस आदमी को चीरते फाड़ते नोच रहे थे। अयांश विनीत पुल के जहां नॉर्मल खड़े थे, वहीं आरवी की आंखों में बेहद गुस्सा नजर आ रहा था। आंखों के सामने भयानक दृश्य को देखकर भी उसके गुस्से से भरे हाव भाव टस से मस ना हुए। आरवी को देखकर यूं लग रहा था उस भावुक लड़की को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जिस लड़की से किसी की तकलीफ तक नहीं देखी जाती, आज वो लड़की किसी को तकलीफ में क्या दर्द से चिल्लाते देख भी विचलित नहीं हो रही थी, पत्थर बनी खड़ी थी, मानो फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। तभी विनीत ने थोड़ा सा झुककर आरवी के चेहरे की तरफ देखा, उसने थूक गटक लिया और धीरे से पास खड़े अयांश से बोला, ये हमारी आरवी है ना? अयांश ने विनीत की ओर टेढ़ी नजरों से देखा। विनीत फट से फिर बोला, हमारी नहीं, तेरी आरवी है ना, देख तो, ऐसी तो कभी नहीं थी। अयांश, तुमने कैसे क्या बना दिया है आरवी को? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अब एक नहीं बल्कि दो दो अयांश मेहरा हो गए हों। तुम तो हो ही आरवी को लेकर पजेसिव, ये तुमसे भी चार कदम आगे निकली। मुझे तो लगता था ये सिर्फ मजाक में बोलती है। मेरे पति पर किसी ने नजर भी डाली तो नजरें निकाल लूंगी। मेरी मोहब्बत को मुझसे छीनने की कोशिश किसी ने की तो उसके टुकड़े टुकड़े कर कुत्तों को खिला दूंगी। मिस्टर मेहरा को किसी ने मुझसे कभी दूर करने की, उनको चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसकी जान ले लूंगी, उसको जिंदा कुत्तों के सामने डाल दूंगी। बट ये सब तो सच निकला अयांश, मजाक नहीं था आरवी का, विनीत आगे बोलता। अयांश बोल पड़ा, चोट लगी है मुझे। ये सुन विनीत ने अयांश के कंधे की ओर देखा, गोली लगी है मुझे। मेरी छोटी सी चोट बर्दाश्त ना होती आरवी से, फिर यहाँ तो बात मुझसे जुड़ी हो तो मेरी बीवी की वो बात कभी मजाक नहीं होती, बोला अयांश आरवी के पास चला आया और पीछे से आरवी को हक करते अपना चेहरा आरवी के कंधे पर टिकाते बोला, वाइफी आर यू फाइन? आरवी ने गहरी सांस भरी और अपना सिर अयांश के कंधे पर पीछे की ओर गिराकर आंखें मूंदते बोली, आई एम फाइन, एक पल रुककर, मैंने समझाया था फिर भी नहीं समझा, दूर रहना मेरे पति से कहा था पर नहीं रहा, समझ जाता तो जिंदा रहता, नहीं समझा तो। अब वो जगह शांत हो चुकी थी, उस आदमी की चीखें बंद पड़ चुकी थी, वो मर गया था। मर क्या, कुत्तों ने भी उसको चट कर लिया था। अब वो भी शांत होकर उस पिंजरे में बैठ गए थे। तभी अयांश ने आरवी को अपनी तरफ घुमाकर बाहों में भरते सीने से लगा लिया और दीवानगी भरे लहजे में बोला, जुनून ऐसा तेरा नाम लबों से हटे नहीं, मोहब्बत ऐसी दिल तुझसे कभी भरे नहीं। आरवी ने भी अयांश पर बाहें लपेट ली और प्यार से बोली, दीवानगी कह लो या इबादत मेरी, तू सामने हो तो सजदे हम करे नहीं। सीन थ्री। आधी रात का समय एक गाड़ी एक सुनसान सी जगह पर आकर रुकी। उस गाड़ी से विनीत और आरवी जल्दी से बाहर निकले। उन दोनों के चेहरे पर 12 बजे हुए थे, यानी दोनों डरे और घबराए से नजर आ रहे थे। वो गाड़ी से निकलते ही हैरानी से इधर उधर देखने लगे। विनीत परेशान होते हुए बोला, आरवी वो दोनों कहाँ हैं? आरवी डरी सी बोली, पता नहीं विनीत जी, यहाँ तो नजर ही नहीं आ रहे।
तभी धाएं धाएं दो गोलियों के लगातार चलने की आवाज से वो जगह गूंज उठी। दोनों के होश उड़ गए। उन्होंने फट से एक दूसरे की ओर देखा और अपने सिर पकड़ते हुए एक साथ बोले, मरे, और फिर दोनों उस दिशा की ओर भाग खड़े हुए जहां से गोलियों के चलने की आवाज आई थी। पर कुछ दूरी पर जाकर ही उनके कदम रुक गए और दोनों ने थूक कटक लिया। दोनों से थोड़ी दूरी पर ही अयांश और उसके बगल में एक लड़की खड़ी थी। उन दोनों के हाथ में गन थी। इतना ही नहीं, एक लाश भी उनके सामने पड़ी थी जिसे दोनों गुस्से से घूर रहे थे। ये देख विनीत आरवी से धीरे से बोला, आरवी हम दोनों का क्या होगा? हम दोनों की जिंदगी में पार्टनर के रूप में डेविल्स आ चुके हैं। आरवी भी मासूमियत से बोली, हाँ विनीत जी, बप्पा से हमने अच्छे प्यारे पार्टनर मांगे थे पर जो मिले हैं बड़े ही खतरनाक हैं। हमें तो एक डेविल हस्बैंड मिला ही था, आपको भी खूंखार बीवी मिल गई जो मिस्टर मेहरा के जैसे कभी भी किसी को भी मार काट सकती है। विनीत यार, मुझे तो बहुत डर लगने लगा है इन दोनों से, किसी दिन ये लोग हमें ही मार काटना दे। आरवी कर तो सकते हैं ये ऐसा, कोई भरोसा नहीं, इन दोनों का जब दिमाग घूमता है तब ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। विनीत और बात जब हमारी हो तो सारी हदें पार कर सकते हैं। आरवी पर ये सही तो नहीं? हाँ सही तो नहीं, पर इन्हें कौन समझाए? तभी अयांश और वो लड़की उनकी ओर मुड़ गए। इसी के साथ ही आरवी और विनीत के कदम पीछे की ओर लड़खड़ाए। ये देखकर अयांश और उस लड़की के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। दोनों आरवी विनीत की ओर चले आए। उन्हें अपनी ओर आते देखकर आरवी विनीत के सांसें थमने लगी। विनीत फुसफुसाते हुए बोला, आरवी देखो हमारे पास ही आ रहे हैं, भागें क्या यहां से? आरवी ने आह भर ली, भाग कर जाएं क्या? तभी अयांश और वो लड़की दोनों के सामने आ खड़े हुए। लड़की ने एक नजर अयांश को देखा और फिर विनित का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। आरवी बस देखती रह गई। आरवी ने जैसे ही उनसे नजरें हटाकर अयांश की ओर देखा, उसने आरवी को उसी वक्त अपने करीब खींच लिया। आरवी अयांश के सीने से जा टकराई। अयांश ने अपना चेहरा आरवी के कान के पास किया और तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, व्हाट हैपेंड वाइफी? आरवी ने चेहरा पीछे कर अयांश की आंखों में देखा। ये सब क्या है मिस्टर मेहरा? वो आगे बोल पाती उससे पहले अयांश ने आरवी के होठों पर अपने होठ रख दिए। उधर विनित उस लड़की के साथ जाते हुए सहमी सी आवाज में बोला, कहाँ ले जा रही हो मुझे? देखो, अगर मेरा भी मर्डर करने वाली हो तो मुझे पहले ही बता दो। लड़की चलते चलते बोली, पहले बता दूंगे तो क्या जिंदा बच जाओगे? विनित मुंह बनाते हुए बोला, जिंदा तो नहीं बचूंगा, पर आखिरी इच्छा तो पूरी करवा लूंगा ना। तभी वो लड़की रुक गई और विनित की ओर मुड़ते हुए बोली, क्या है आखिरी इच्छा? विनित ने थूक कटक लिया, मतलब मुझे मारने का इरादा बना चुकी हो? गोली मारोगी? या वो आगे बोल पाता, उस लड़की ने विनित को कॉलर से पकड़ अपने करीब खींच लिया। गोली तो दूसरों के लिए है, यहां तो मैं ही काफी हूं। इतना कहते ही उस लड़की ने विनित के होठों पर अपने होंठ रख दिया।